नमस्कार भारत, तारीख 2 अगस्त दिन मंगलवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। लीबिया में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर अमेरिका के हवाई हमले। इराक में मारे गए एक अमेरिकी मुसलमान फौजी के मां बाप के खिलाफ ट्रंप का ट्विटर युद्ध, क्या ट्रंप को माफी मांगनी चाहिए?
माफी की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम माफी से बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं। हम पोजीशन क्या है, पोजीशन वो ये है कि हमारे बेटे की कुर्बानी इस मुल्क की हिफाजत के लिए।
आनंदी बेन पटेल के इस्तीफे की पेशकश के बाद चर्चा इस पर कि गुजरात के अगले मुख्यमंत्री की कमान किसे मिलेगी।
10-12 साल तक नरेंद्र भाई ने जिस तरह से एक तानाशाह की तरह से जो भूमिका अदा की, उसकी वजह से किसी दूसरे छोटे मोटे कमल को उन्होंने पनपने की कोई जगह नहीं थी।
खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। अमेरिका ने कहा है कि उन्होंने लीबिया के सिरते शहर में खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इन हमलों के लिए लीबिया में संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली सरकार ने अनुरोध किया था। अमेरिका के टेक्सास शहर में एक विवादित कानून लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब विश्वविद्यालय परिसर में छात्र बंदूक लेकर जा सकेंगे। यह कानून 7 अन्य राज्यों में भी लागू है। इस नए कैंपस कैरी कानून का समर्थन करने वालों का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में बंदूक छिपाकर नहीं रखने से गोलीबारी पर रोक लगाई जा सकेगी। लेकिन इस कानून के आलोचकों का कहना है कि इससे डर का माहौल बनेगा और यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंटने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष टॉमस बाख ने रियो डी जेनेरियो के प्रदूषण के स्तर के अधिक होने संबंधी खबरों को खारिज किया है। रियो से बीबीसी संवाददाता का कहना है कि पानी के खेलों का आयोजन किए जाने वाले स्थान ग्वानाबारा बे में गंदगी और रासायनिक प्रदूषण की मात्रा अधिक है, लेकिन टॉमस बाख कहते हैं कि वे इस बात से खुश हैं कि आयोजन का काम ठीक से हो रहा है। उन्होंने कहा, ग्वानाबारा बे में पानी की बात करें तो हम यहाँ पर एक दिन में 4 टेस्ट करते हैं और सभी टेस्ट में यह पता चला है कि विश्व स्वास्थ्य संस्था के मानकों के अनुसार पानी की गुणवत्ता सही है। बे के किनारे किसी गंदगी निकालने का काम चल रहा है। बीच वॉलीबॉल के खेल की तैयारियों के लिए भी काम चल रहा है। ये थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष टॉमस बाख के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मेक्सिको में अधिकारियों का कहना है कि 3 व्यक्तियों के शव बरामद किए जाने के बाद उन्होंने हत्या के आरोप में एक 17 साल के युवक को हिरासत में लिया है। उनका कहना है कि युवक की गर्लफ्रेंड ने बताया कि युवक मारे गए 3 लोगों पर तब गुस्सा हो गया था जब उनमें से एक ने उनकी तरफ देखा, दूसरे ने उनके कपड़े बदलते वक्त पर्दा खोल दिया था और तीसरे व्यक्ति उनके कमरे में घुस आए थे। बोलिविया की पुलिस ने 7 टन का नशीला पदार्थ कोकीन जब्त किया है। माना जा रहा है कि ये कोकीन अमरीका ले जाया जा रहा था। इस कोकीन को खनिज अयस्क ले जा रही मालगाड़ियों में छिपाकर दूर दराज के पहाड़ों के पास से होते हुए चिली के बंदरगाह की तरफ ले जाया जा रहा था। एक सरकारी अधिकारी का कहना है कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जब्त किए गए कोकीन की कीमत $400 करोड़ है और इसे 10 महीने लंबी जाँच के बाद पकड़ा गया है। वेनेजुएला के चुनाव आयोग का कहना है कि देश की विपक्ष ने राष्ट्रपति निकोलास मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए जनमत संग्रह करने संबंधी प्रस्ताव के लिए जरूरी 2,00,000 हस्ताक्षर जमा कर लिए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। लीबिया में कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट की बढ़ती मौजूदगी ने पश्चिमी ताकतों को चिंता में डाल दिया है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली लीबियाई सरकार के साथ देश में पहली बार सैन्य हस्तक्षेप किया है और इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का कहना है कि हमले को मंजूरी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दी है और ये इस्लामिक स्टेट से लड़ रही सरकारी सेनाओं को सहयोग देने के लिए किए गए हैं। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए मानसी दास से।
अमेरिका ने कहा है कि उन्होंने लीबिया में खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी समूह के ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए हैं। हमले बंदरगाह वाले शहर सिरते पर किए गए हैं, जिसे इस्लामिक स्टेट का गढ़ माना जाता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का कहना है कि इसके लिए लीबिया में संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली सरकार ने अनुरोध किया था। पेंटागन के प्रवक्ता पीटर कुक ने कहा,
Today at the request of Libya's government of national accord, the United States conducted precision airstrikes against
सिरते के इलाके में स्टेट संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली सरकार के बताए गए निशानों पर हमलों में हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन ये सटीक निशाने हैं जिनके बारे में हमसे मदद मांगी गई थी और जिनके कारण उन्हें परेशानी हो रही थी। जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ, आज हमने एक टैंक को निशाना बनाया।
ये थे पेंटागन के प्रवक्ता पीटर कुक। पेंटागन से जारी एक बयान में कहा गया है कि इन हमलों और इससे पहले जो कार्यवाही हुई उनसे इस्लामिक स्टेट को लीबिया में सुरक्षित ठिकाने बनाने से रोकने में मदद मिलेगी, जहां से वह अमेरिका और उनके सहयोगियों पर हमले कर सकता है। लीबिया की सरकार ने इसी साल मई में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग शुरू की थी। लीबिया के प्रधानमंत्री फयाज अल सराज ने टीवी पर अपने भाषण में कहा है कि सटीक ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए इन हमलों से इस्लामिक स्टेट को भारी क्षति हुई है। उन्होंने कहा,
सिरते में कुछ खास जगहों को निशाना बनाकर इस तरह के पहले हमले किए गए हैं, जिसमें दुश्मनों के उपकरणों और हथियारों को नुकसान पहुंचाया है और जमीन पर कई अहम और कूटनीतिक महत्व वाली जगहों पर लीबियाई सेना का कब्जा हो गया है, जिससे अब वे आगे बढ़ सकते हैं और हमारे जवानों की जिंदगी भी बचेगी।
लीबियाई प्रधानमंत्री फयाज अल सराज ने यह भी कहा है कि हमले सिरते और उसके नजदीकी इलाकों तक ही सीमित होंगे और उन्होंने अपने मित्र देशों से, खासकर अमरीका से, केवल हवाई हमलों में ही सहायता मांगी थी। अमरीकी अधिकारियों के एक अनुमान के अनुसार लीबिया में इस्लामिक स्टेट के करीब 6,000 लड़ाके हैं और यह आंकड़ा सरकारी सेना और अन्य गुटों की ओर से पड़ रहे दबाव के कारण कम हो रहा है। साल 2011 में मुअम्मर गद्दाफी को अपदस्थ करने के बाद से लीबिया में प्रतिस्पर्धी सरकारों और गुटों में इलाके में प्रभाव हासिल करने की होड़ छिड़ गई थी। इस कारण पैदा हुए माहौल में इस्लामिक स्टेट के कई लड़ाके सीरिया से होते हुए लीबिया आ गए थे।
अमेरिका ने लीबिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को निशाना बनाया। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय खबर, अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के कथित मुस्लिम विरोधी ताजा बयानों से देश में एक नई बहस छिड़ गई है। इराक में मारे गए एक अमरीकी मुसलमान फौजी के माँ बाप खिज्र खान और गजाला खान ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुर्बानी शब्द के मायने नहीं जानते। पाकिस्तानी मूल के खिज्र खान ने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में एक भावुक भाषण देते हुए डोनाल्ड ट्रंप की खासी आलोचना की थी और उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने उनके खिलाफ ट्विटर युद्ध छेड़ दिया है। जब खिज्र खान बोल रहे थे तो उस वक्त उनकी पत्नी गजाला खान खामोशी से उनके पास खड़ी थी। बाद में ट्रंप ने उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए थे। ट्रंप ने कहा कि हो सकता है कि उन्हें बोलने की अनुमति न दी गई हो। खान परिवार के खिलाफ ट्रंप के बयानों की उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने भी तीखी आलोचना की है और अमेरिका में ये एक बड़ी राजनीतिक बहस का शक्ल ले चुका है। बीबीसी के हमारे वॉशिंगटन संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय ने खिज्र और गजाला खान से एक खास बातचीत की।
एक बेहद जिसे हम पावरफुल मोमेंट कहते हैं, जब आपने अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन निकाला, आईन निकाला और कहा कि ट्रंप साहब को ये पढ़ना चाहिए, आपने पहले से सोच रखा था इस बारे में?
मैंने पहले से ये सोचा था, मेरे अल्फाज ये थे, डोनाल्ड ट्रंप, हैव यू रेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इन देयर लुक फॉर द वर्ड्स लिबर्टी एंड इक्वल जस्टिस एंड इक्वल डिग्निटी। ये अल्फाज थे मेरे। तो जब कमरे से हम टैक्सी में बैठने के लिए, कन्वेंशन जाने के लिए नीचे आ रहे थे, तो मैंने कोट उस वक्त पहना हैंगर से। जब मैंने कोट इस तरह से पहना तो मेरा हाथ जेब को लगा, जेब को हाथ लगा तो मैंने कहा कि इट बी गुड ओकेजन कि मैं इसको निकाल के कहूँ, बजाय इसके कि हैव यू रेड द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ़ नॉट देन आई, तो वो मैंने आखिरी वक्त में उसमें ऐड किया।
इतना बड़ा तूफान खड़ा होगा कि ट्रंप सीधा आप पर हमला करने लगेंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ सड़क पर लोग रोक रोक करके आप दाद दे रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया, अंदाज़ा था ये आपको?
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये कुदरत की तरफ से रहनुमाई हो रही है इस मामले में। हम मुसलमान हैं, इमिग्रेंट हैं, और इसने मुसलमानों पे हमला शुरू किया होगा, तो वो उस वक्त ख्याल आया कि हम तो इस पोजीशन में हैं कि ये कह सकें कि वी आर पैट्रियारिक मुस्लिम्स, विच वी आर। इस वजह से जब वो अल्फाज मुंह से निकले तो वो लोगों के दिलों को लगे।
ट्रंप अभी भी ट्वीट कर रहे हैं और खासा गुस्सा निकाल रहे हैं आप पर, क्या पैगाम है आपका ट्रंप के लिए आज?
ट्रंप के लिए मेरा ये पैगाम है कि सबसे पहले ये कि मैं उससे कोई बराह रास्त मुखातिब नहीं हूँ। दूसरी ये बात है कि एक قوم کے رہنما میں اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ وہ تنقید کو برداشت کر سکے، یہ اس کی لیڈرشپ کی کا حصہ ہے۔
یہ رکے گا کہاں؟ آپ کیا چاہیں گے کہ وہ معافی مانگے؟
نہیں، معافی کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے، ہم وی آر مور ڈگنیفائڈ دین معافی، معافی سے بڑی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں ہم۔ پوزیشن کیا ہے؟ پوزیشن وہ یہ ہے کہ ہمارے بیٹے کی قربانی اس ملک کی حفاظت کے لیے، ہم گولڈ اسٹار فیملی ہیں، اس ملک کی گولڈ اسٹار فیملیز جو ہوتی ہیں اس کو یہ قوم انتہائی بڑے مقام پر بٹھاتی ہے، وہ پریزیڈنٹ سے بھی بڑا مقام ہوتا ہے۔
جب آپ وہاں پر کھڑی تھیں اور اس بارے میں ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ وہ بالکل خاموشی سے کھڑی تھی، ان کو شاید بولنے نہیں دیا جا رہا اور اشارہ تھا اسلام میں اس طرح سے ہوتا ہے، اس کے جواب میں کیا کہیں گی آپ؟
اس وقت جب میری پوزیشن تھی، سارے امریکہ نے اس کو محسوس کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا پرابلم تھی کہ اس نے وہ میری تکلیف نہیں دیکھی، میری خاموشی دیکھی؟ بس پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے یہ سب کچھ کہ اس نے مجھے اتنا اسٹرانگ بنا دیا کہ میں اسٹیج تک پہنچ گئی۔ اور جہاں تک میری تکلیف کہ میرے بیٹے کی تصویر پیچھے لگی ہوئی ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں بات کرو وہاں کھڑی ہو کے، میرے میں نہیں ہمت تھی۔ اور جو کچھ خان صاحب میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے وہ میری ہی آواز تھی پیچھے۔
ٹرمپ اگر آپ کے آمنے سامنے ہوتے ہیں یا ان سے سوال جواب آپ کو کرنا ہو، کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا پیغام ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے؟
میں تو ویسے کبھی بھی کسی کو چیلنج نہیں کرتی، میں تو صرف یہی کہوں گی کہ خدا تیرے دل میں روشنی دے، تجھے پیار اور محبت کرنا سکھائے، اور اپنے اندر جھانک کے اپنے آپ کو سمجھائے۔ خدا اتنی طاقت دے تمہیں کہ اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہے۔
تھوڑا سا اپنے بیٹے کیپٹن ہمایوں خان کے بارے میں بتائیں، فوج میں جانے کا کیسے فیصلہ کیا انہوں نے؟
میں نے تو روکا کیونکہ میں تو نہیں برداشت کر سکتی تھی، میں نے اس کو روکا۔ ہنس کے کہتا ہے کہ نہیں نہیں، مجھے ان کا ڈسپلن، مجھے لوگوں کے ساتھ کام کرنا بہت پسند ہے۔
اب پبلک لائف میں ایک طرح سے آپ آ چکی ہیں، آپ پر حملے ہوں گے، ان پر حملے ہوں گے، کیونکہ ایک طرح سے سیاسی منچ پر آپ اترے ہیں، تیار ہیں اس کے لیے؟
اگر آپ تیار ہیں۔
نہیں، میں تیار نہیں ہوں کسی قسم کے حملے کے لیے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حملے ہوں گے۔
زبانی
تنقید، ظاہر ہے جب آپ کسی پہ تنقید کریں گے دوسرے کو بھی حق ہے کہ آپ پہ تنقید کرے، تو وہ سیاسی گفتگو کا حصہ ہے۔
اور یہ ممکن ہے کہ آپ ہلری کلنٹن کے لیے آنے والے 2-3 مہینوں میں کیمپین کریں گے اگر ان کی طرف سے یہ ریکویسٹ آتی ہے، گزارش ہوتی ہے؟
مجھے بڑی خوشی ہوگی، ابھی تک انہوں نے نہ پوچھا ہے نہ انہوں نے کوئی پیشکش کی ہے، انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔
خضر اور غزالہ خان سے بات کر رہے تھے، واشنگٹن میں بی بی سی سمواددتا برجیش اپادھیائے۔
نمسکار بھارت، شارٹ ویو 31, 25 اور 19 میٹر بینڈ، یعنی 9835, 9915, 11995 اور 15510 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز پر۔
آپ سن رہے ہیں بی بی سی ہندی سیوا کی پہلی سبھا نمسکار بھارت، رخ بھارت کا کرتے ہیں۔ گجرات کی مکھیہ منتری آنندی بین پٹیل نے اپنے پد سے استعفے کی پیشکش کی ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی ادھیکش امت شاہ کا کہنا ہے کہ سنسدیے بورڈ کی بیٹھک میں اگلے قدم کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ پاٹی دار آندولن سے لے کر اونا وواد تک آنندی بین پٹیل لگاتار وادوں میں گھری رہی۔ گجرات کی مکھیہ منتری آنندی بین پٹیل کے استعفے کی پیشکش کے بعد چرچا اب اس بات پر ہے کہ گجرات کا اگلا مکھیہ منتری کون ہوگا۔ احمد آباد سے انکور جین کی رپورٹ۔
پہلے پٹیل راستے پر آئے، پھر او بی سی اور بعد میں دلت، یہ تینوں گجرات میں بی جے پی اور نریندر مودی کے جیت کے مکھیہ کارن رہے ہیں۔ ان تینوں کے بی جے پی کے خفا ہونے کی خبروں کے بیچ یہ طے سا تھا کہ آنندی بین پٹیل کو اب جانا پڑے گا، اور سوموار کو یہی ہوا۔ پر اب کیا، کون بنے گا گجرات کا نیا مکھیہ منتری؟ کیا وہ پٹیل ہوگا، یا پھر دلت، یا پھر نریندر مودی دلی سے کسی نئے چہرے کو گجرات بھیج دیں گے، یا پھر وہ نہیں سویکاریں گے آنندی بین کا استعفیٰ؟ کیونکہ استعفیٰ تو آنندی بین نے 2 مہینے پہلے بھیجا تھا، سوموار کو تو بس انہوں نے فیس بک پر استعفے کی بات کو سارجنک کیا۔ بہرحال گجرات میں آنندی بین پٹیل کے استعفے کے بعد کئی ناموں کی چرچا ہو رہی ہے۔ گجرات سرکار میں کیبنیٹ منتری اور نئے سی ایم کی ریس میں کھڑے نتن پٹیل کہتے ہیں،
آنندی بین نے استعفیٰ دیا ہے اور پارٹی نے سنسدیے بورڈ کی بیٹھک بلائی ہے، اس میں ہائی کمان ہمارا نرنے کرے گا۔ میڈیا میں اٹکلیں چل رہی ہے، لیکن ہمارا ہائی کمانڈ جو ہمارا راشٹریہ کاروباری اور راشٹریہ پارلیمنٹری بورڈ ہے، और हमारे वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सब नेतागण मिलकर इसके बारे में आखिरी निर्णय करेंगे। देखिए सभी गवर्नमेंट में छोटे मोटे प्रॉब्लम तो आते ही रहते हैं। गुजरात में भी हम कई सालों से हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है।
पर इतना आसान नहीं होगा मोदी के लिए किसी भी चेहरे को गुजरात में लाना। आनंदीबेन पटेल ने अपने इस्तीफे में भाजपा प्रमुख अमित शाह का नाम ना लेकर उनसे अपने मतभेद की बात की पुष्टि कर दी है। अब मोदी को कोई ऐसा चेहरा चाहिए जो पार्टी की आंतरिक लड़ाई और गुजरात में मजबूत हो रही आम आदमी पार्टी और बीएसपी की पकड़ से ऊपर उठ कर बीजेपी को 2017 में जीत दिलवा सके, क्योंकि गुजरात मोदी के लिए वो ट्रॉफी है जिसे लेकर वो 2019 का चुनाव लड़ना चाहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक कार्यकर्ता मनीषी जानी मानते हैं कि गुजरात में बीजेपी के पास लोकप्रिय नेताओं का अभाव है।
ये दो चीज है कि जिस तरह से अपर कास्ट का जो कंट्रोल जिस तरह से हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ में पनपा यहाँ पर तो बड़ा है, और वो सीधी बात है कि जो आरएसएस से जुड़ी पार्टी है वहाँ पर कास्ट सिस्टम या एंटी माइनॉरिटी या एंटी वुमेन ये सब एक पूरा एक माहौल गुजरात में ये पुरातनवादी संस्कृति से ज्यादा पड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह कि 10-12 साल तक नरेंद्र भाई ने यहाँ पर जिस तरह से एक तानाशाह की तरह से उनकी पार्टी में और सरकार में जो भूमिका अदा की उसकी वजह से किसी दूसरे छोटे मोटे कमल को उन्होंने पनपने की कोई जगह नहीं दी। तो आज बड़ी एक क्राइसिस ऐसी खड़ी हो गई है, समाज के जो दूसरे तबके लोग हैं उनके लिए कोई ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ से कोई आशा रख सके। ऐसे कोई लीडर नहीं है बीजेपी के पास में या सरकार में बैठे हुए या चीफ मिनिस्टर, तो एक ज्यादा हताशा हुई है। और जो सोशल सेक्टर में जिस तरह से चाहे हेल्थ हो या एजुकेशन हो या ट्राइबल के लिए हो या दलितों के लिए हो, इनकी स्कीम में ऐसा कुछ ज्यादा कटौती भी उसी में की ज्यादा की गई है। तो उसकी वजह से इस सरकार में जो दलित है या आदिवासी है और खास करके युवाओं में एक आक्रोश ज्यादा बढ़ा हुआ है।
लेकिन इन सब के बीच गुजरात ने आज देश को एक और नया मॉडल दे दिया। सोशल मीडिया पे कंपनी के सीईओ और डायरेक्टर को इस्तीफा देते तो कई बार देखा है, पर आनंदीबेन पटेल फेसबुक पे इस्तीफा देने वाली पहली मुख्यमंत्री बनी। अब क्या इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए नरेंद्र मोदी अमित शाह ट्विटर पर अगले सीएम की घोषणा करेंगे? अंकुर जैन, बीबीसी अहमदाबाद।
अंकुर जैन की हम रिपोर्ट सुन रहे थे। अहमदाबाद से छपने वाले गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी अखबारों की सुर्खियां क्या क्या रही हैं, संपादकीय पन्नों पर आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे पर क्या कुछ लिखा गया है, सीधे कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं अंकुर जैन को अहमदाबाद से। अंकुर बताएं क्या कुछ कहा गया है आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे को लेकर?
मोहनलाल जी, सभी अखबारों में स्वाभाविक है कि गुजरात के मुख्यमंत्री का जो अचानक फेसबुक पोस्ट पे अपना इस्तीफे देने की बात थी वही अहम खबरें हैं। जहां अहमदाबाद से पब्लिश होने वाले गुजराती अखबार संदेश के फ्रंट पेज पर लिखा है कि आनंदीबेन पटेल अब सीएम का सीएम पद से इस्तीफा, और कहा है कि राजीनामा जो इस्तीफा है वो नए उसके बाद नए मुख्यमंत्री कौन होंगे। और वहीं एडिटोरियल पेज पे आनंदीबेन ने जो पिछले 2-3 दिनों में जो अनाउंसमेंट की है, आपको याद हो तो उन्होंने गुजरात में सभी टोल बूथों पर जो गवर्नमेंट टोल बूथ थे वहाँ फैमिली कार्स, प्राइवेट कार्स को माफी दे दी थी 15 अगस्त से। पाटीदार आंदोलन के वक्त जो सभी पाटीदार युवाओं पे जो केस हुए थे, करीबन 1000 से अधिक केस हुए, तो सभी केसेस को वापस लेने की बात की थी। तो उसी की चर्चा लेके क्या आनंदीबेन पिछले 2-3 दिन से आज सोमवार के लिए बिल्डअप कर रही थी, उसी के लेके एक एडिटोरियल पीस लिखा हुआ है। वहीं गुजरात से छपने वाला दूसरा दिव्य भास्कर अखबार में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जिसमें अटकलें लगाई गई है कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री अब आनंदीबेन पटेल के बाद कौन होगा।
कुछ नामों की चर्चा है उसमें?
कुछ नामों की जरूर चर्चा है, जिसमें नितिन पटेल की बात की गई है, जिसमें जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के विजय रूपानी उनकी बात की गई है। और भास्कर में लिखा है कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा उसकी राशि जो है या वो ऋषभ या धन राशि का होगा। तो उन्होंने थोड़ा
ऋषभ राशि के हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जैन। और यहाँ पर अब हम रुक कर लेते हैं कि दिल्ली के समाचार पत्र क्या कह रहे हैं। मानसी, इस खबर के अलावा समाचार पत्र क्या कह रहे हैं?
समाचार पत्रों में नरसिंह यादव का मामला छपा है और नरसिंह यादव की खबर को हर अखबार ने, लगभग हर अखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है। मामला यह है कि दो बार डोप टेस्ट में फेल होने के बाद पहलवान नरसिंह यादव को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने दोष मुक्त कर दिया है।
विस्तार से हम जब खेल समाचार सुनेंगे तो बताएंगे।
अखाड़े से बाहर कुश्ती ज्यादा कठिन है। इधर दिल्ली से छपने वाले अंग्रेजी के हिंदुस्तान टाइम्स का पहला कवर पन्ना जो है उसमें उत्तर प्रदेश के उन नेताओं के नाम है जिन्होंने अपने सरकारी बंगले अभी तक खाली नहीं किए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने राज्य के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया है कि वे सरकारी बंगले खाली करें।
राजनाथ सिंह है, मुलायम सिंह है, मायावती है, कल्याण है, एनडी तिवारी है, रामनरेश यादव है।
जी सही कहा आपने, मुलायम सिंह यादव का नाम है, उमा भारती का नाम है, कल्याण सिंह का नाम है, लालू प्रसाद यादव, अशोक गहलोत, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन के नाम इनमें शामिल है। आपको एक और खबर बता दूं दी स्टेटमेंट से, इसमें एक खबर है कि गोवा की सरकार ने हाल में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की गोवा यात्रा पर कहा है कि उस यात्रा में मात्र 500 रुपये सरकारी खजाने से खर्च हुए थे। खबर यह है कि राज्य मंत्री दिलीप पारुलेकर ने विधानसभा को बताया है कि यात्रा के दौरान केजरीवाल ने राज्य के गेस्ट हाउस में रहने से मना कर दिया था और जो खर्च हुआ वो सिर्फ एक गुलदस्ते पर हुआ था।
बहुत बहुत शुक्रिया मानसी दास। भारत की कुछ अन्य खबरों का जिक्र करते हैं। बिहार के बहुचर्चित टॉपर्स घोटाले मामले में गिरफ्तार की गई 12वीं क्लास की कला संकाय की टॉपर रही रूबी राय को पटना की एक अदालत ने जमानत दे दी है। पटना से हमारे सहयोगी नीरज सहाय की रिपोर्ट।
राज्य में पहली बार उजागर हुए बहुचर्चित टॉपर घोटाले की जड़ें कितनी गहरी हैं इसका खुलासा अभी पूरी तरह तो नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया से अपनी पहली बातचीत में पॉलिटिकल साइंस को खाना बनाना सिखाने वाला विषय बताकर आरोपी आर्ट्स टॉपर ने बिहार की गिरती शिक्षा व्यवस्था को सबके सामने ला दिया। आरोपी छात्रा को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके पिता अब भी फरार हैं। सोमवार को छात्रा को पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जमानत दे दी। आरोपी छात्रा की ओर से पेश हुए वकील केडी मिश्रा बताते हैं कि
केस में जो जुवेनाइल लड़की है उसको आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट के द्वारा जमानत प्रदान किया गया है।
वकील केडी मिश्रा इस मामले पर अदालत का रुख स्पष्ट भी करते हैं। उनके अनुसार
बैंक के दौरान अभिलेख का अवलोकन किया गया, अभिलेखन के में पाया गया हो सकता है तो जमानत प्रदान करना हो सकता है।
टॉपर घोटाले मामले में अब तक बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह, उनकी पत्नी उषा सिन्हा और विशुन राय कॉलेज के प्राचार्य बच्चा राय समेत 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इनमें से 2 की जमानत पहले ही हो चुकी है। अब देखना यह है कि घोटाले के सरगनाओं पर कब तक और क्या क्या कार्रवाई होती है। नीरज सहाय, BBC, पटना।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज बनारस में रोड शो करने वाली हैं। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही है। बनारस से हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल की रिपोर्ट।
बतौर CM नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के रूप में वाराणसी को पहचान मिलने के बाद से ही ये साफ हो चुका था कि बनारस आने वाले दिनों में राजनीतिक नजरिए से एक बड़ा खाड़ा साबित होगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जीत का स्वाद चख चुकी BJP के ही अंदाज में कभी देश की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस भी वही रास्ता अपनाएगी। तभी तो 27 साल UP बेहाल के नारे के साथ उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूकने के लिए बनारस को चुना गया, जिसकी अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाकर करेंगी। इस बारे में और जानकारी दी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राज बब्बर ने और PM मोदी पर जमकर निशाना भी साधा।
हम बाबा विश्वनाथ के पास में जा रहे हैं, हमारे मुखिया हैं, हमारी पार्टी की जो अध्यक्षा हैं, तो ये जनता के बीच में से गुजर कर जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद लेकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके। प्रधानमंत्री ने जो यहाँ पर वादे किए थे पूरे देश को विकास के, महंगाई के खत्म करने के, पूरे देश को 15-15 लाख रुपए देंगे और नौजवानों को नौकरियां देंगे, किसी को कुछ नहीं मिला। और उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने बुलाया था इसलिए कि इस देश को विकास की जो उन्होंने, इस देश को महंगाई खत्म करके, इस देश में सुशासन का जो उन्होंने लोगों को प्रलोभन दिया था वो प्रलोभन भरकर रह गया। और हम बनारस में आकर ये साबित करना चाहते हैं कि बनारस से ज्यादा और इससे ज्यादा उपयुक्त जगह कौन सी होगी।
वहीं दूसरी ओर काशी वासियों का सोनिया गांधी के रोड शो को लेकर अपना अपना ही नजरिया है। वाराणसी की जनता कहती है,
हमारा मानना यही है कि सारे लोग इसी तरह आते हैं, सब कुछ वादा करके चले जाते हैं। सांसद जी हमारे मोदी जी हैं, वो भी आते हैं और बोल के चले जाते हैं। अब तक 2 साल हो गया, गड्ढे नहीं भरे जो है। प्रदेश सरकार उसी तरह करती जा रही है, ये भी आएंगे उसी तरह चले जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं है इनका भी आने का। कोई
एकरे पहले नारायण दत्त तिवारी को भी तो सरकार रहा कांग्रेस का, तो मन वो का कैलन नारायण दत्त तिवारी का कैलन, और उसके बाद भाजपा सपा जो भी आयल महंगाई पर तो कोई भी काबू ना करे। कांग्रेस सरकार केंद्र में भी तो रहा, कौन महंगाई पर काबू पा लेलन। हमके ना लगत हो कि सोनिया गांधी के रोड शो में इतना कुछ हुए।
अगर कांग्रेस के रणनीतिकार ये सोचते हैं कि सिर्फ ऊपर वाले के ही आशीर्वाद के बल पर और किसी के जीत के फार्मूले को अपनाकर यूपी चुनाव में ताल ठोकने से कामयाबी मिल सकती है, तो शायद वो गलत हैं। क्योंकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी संसद चुनाव के पहले बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेका था। बीबीसी हिंदी के लिए वाराणसी से रोशन जायसवाल।
तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज बनारस में रोड शो करने वाली हैं। और अब कार्यक्रम में खेल जगत की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कल भारत के सभी खेल प्रेमियों की नजरें इस बात पर लगी थी कि 74 किलो भार वर्ग में रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके पहलवान नरसिंह पंचम यादव की किस्मत का क्या होगा। नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की जांच में डोपिंग में फंसे नरसिंह यादव आखिरकार निर्दोष पाए गए। उन्हें इस बात का लाभ मिला कि उनका पिछला रिकॉर्ड साफ सुथरा था। दरअसल नरसिंह का 25 जून और 5 जुलाई को डोप टेस्ट हुआ, वो दोनों में फेल हो गए। विवाद बढ़ा और मामला यहां तक बढ़ा कि भारतीय कुश्ती संघ ने नरसिंह की जगह प्रवीण राणा को रियो भेजने का फैसला किया। नाडा के फैसले के बाद नरसिंह ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा,
मैं भारतीय कुश्ती के प्रेसिडेंट गुरु कृष्ण नरसिंह जी जो इन्हीं को जैसे मैं यहां पे अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रख रहा था, सभी ने सच्चाई का साथ दिया और मुझे न्याय दिलाया और आपके ओलंपिक मेडल लेके आऊं, इससे बड़ी और कुछ नहीं।
वैसे नरसिंह के मामले में भारतीय कुश्ती संघ पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहा। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने पूरी जानकारी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह से मांगी। नरसिंह यादव के डोप टेस्ट में पाक साफ मिलने पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने स्पष्ट किया कि अब प्रवीण राणा की जगह नरसिंह यादव ही रियो जाएंगे।
25 तारीख को रिप्लेसमेंट किया था, उसमें इस बात का जिक्र मैंने किया था कि हमारी हाई लेवल की इंक्वायरी चल रही है और अगर नरसिंह दोष मुक्त हो जाएंगे तो हम प्रवीण राणा की जगह पर नरसिंह को लड़ाएंगे। अब ये दोष मुक्त हो गए, अब जजमेंट की कॉपी लेकर के UWW को और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको हम तुरंत लिखने जा रहे हैं।
पहले तो सुशील कुमार के साथ कानूनी लड़ाई और उसके बाद डोप में फंसकर बच निकलना नरसिंह पंचम यादव के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। उधर भारत के पूर्व राजा और द्विज शरण की जोड़ी ने स्पेन में आयोजित ATP चैलेंजर टूर्नामेंट में पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीत लिया। फाइनल में पूर्व राजा और द्विज शरण ने स्पेन के मनोज हर्नांडेज और जापान के अकीरा संतिलान की जोड़ी को 6-4, 4-6, 10-8 से मात दी। वहीं रियो में इसी सप्ताह से ओलंपिक खेल शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले विभिन्न खेलों के जाने माने खिलाड़ियों का अपना नाम वापस लेने का सिलसिला जारी है। अब इसी कड़ी में नया नाम टेनिस जगत में पुरुष युगल वर्ग में सबसे मजबूत जोड़ी अमेरिका के माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन बंधुओं का है। वैसे उन्होंने इसका कारण परिवार का स्वास्थ्य बताया है। इसी बीच रियो पहुंची भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच रोलेंट ऑल्टमैंस ने शिकायत की है कि खिलाड़ियों के कमरे पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य टीमें भी सही तरह से कमरे न तैयार होने की शिकायत कर चुके हैं।
और अब कार्यक्रम में इससे पहले हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार फिर से सुनते हैं।
BBC समाचार। अमेरिका ने कहा है कि उन्होंने लीबिया के सिरते शहर में खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी समूह के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के टेक्सास शहर में एक विवादित कानून लागू कर दिया गया है जिसके तहत अब विश्वविद्यालय परिसर में छात्र बंदूक लेकर जा सकेंगे। यह कानून 7 अन्य राज्यों में भी लागू है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष टोमस बाख ने रियो डी जेनेरियो में प्रदूषण के स्तर के अधिक होने संबंधी खबरों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि ग्वानाबारा बे में पानी के टेस्ट से ये पता चला है कि पानी विश्व स्वास्थ्य संस्था के मानकों के अनुसार सही है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के संक में बस इतना ही। स्टूडियो संभाले थे दीपक जसरोटिया। विश्व भारती लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।